सुबह की लगभग 8 बज रहे थे। नव्यम अपनी म्यूजिक अकेडमी के हॉस्टल रूम के अंदर था। उसे वहां आए हुए लगभग 5-6 दिन बीत चुके थे। नव्यम ने गुस्से में विक्रांत से बहस करके घर तो छोड़ दिया था, लेकिन इस वक्त वो काफी परेशान था। नव्यम अपना सामान चेक कर रहा था, उसका चेहरा उतरा हुआ था। तभी एक लड़का उसके पास आया, वो उसी की उम्र का लग रहा था। उसने नव्यम के कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या कुछ नहीं हो सकता, मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह बीच ट्रेनिंग में से जाओ। नव्यम ने उसकी तरफ देखा और मायूसी से बोला, मैं भी यही चाहता हूं कि कोई मिरेकल हो जाए और मुझे यहां से ना जाना पड़े। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मुझे अपनी ट्रेनिंग बीच में छोड़नी पड़ेगी राहुल। वो उसका रूममेट और दोस्त राहुल था। राहुल ने आगे पूछा, तुम एक बार उनसे बात तो करके देखो, क्या पता वो मान जाए। बात करने के लिए ही गया था, लेकिन वो अपनी मनमानी कर रहे थे और फिर गुस्से में मैंने अपना घर छोड़ दिया। मैंने प्रिंसिपल से भी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मुझे जो टाइम दिया था वो खत्म हो चुका है। मेरे पास यहां से जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, नव्यम ने एक सांस में कहा और फिर से पैकिंग करने लग गया। राहुल उसके पास बैठ गया और उसकी मदद करने लगा। कुछ देर की चुप्पी के बाद में राहुल ने कहा, काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता, लेकिन मेरी फीस भी मुश्किल से अरेंज होती है। तुमने मेरे बारे में सोचा यही काफी है। 20 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। मेरी ही गलती है जो मैंने अपनी अच्छी खासी पॉकेट मनी को पार्टी करने में उड़ा दिया। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे पास फीस जमा कराने तक के पैसे नहीं हैं और मुझे यहां से जाना पड़ेगा, नव्यम ने जवाब दिया। वो विक्रांत से अपनी फीस के बारे में बात करने के लिए गया था, लेकिन विक्रांत ने तो उसे घर से ही निकाल दिया था। पैकिंग पूरी हो जाने के बाद नव्यम ने इमोशनल होकर कमरे की तरफ देखा। जब वो उस कमरे में आए थे तो वो एक नॉर्मल सा हॉस्टल रूम था, जिसे उसने और राहुल ने मिलकर एक म्यूजिशियन के कमरे के हिसाब से डेकोरेट किया हुआ था। नव्यम ने इमोशनल होकर कहा, मैं तुम्हें और इस कमरे को बहुत मिस करूंगा। देखना, मैं एक दिन यहां जरूर आऊंगा और अपनी ट्रेनिंग को पूरा करूंगा। क्या ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारे डैड के खिलाफ जाकर तुम्हारी हेल्प कर सके? तुम्हारी बहन एक्ट्रेस थी, उससे बात करके देखो। और तुम्हारा भाई, क्या वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकता? राहुल ने कहा। राहुल की बात सुनकर नव्यम के चेहरे पर सरकास्टिक स्माइल थी। उसने राहुल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मुझे किसी से भी उम्मीद नहीं लगानी है। तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरी बहन को सजा हो गई है और मेरा भाई, उसके साथ हमने कभी भी अच्छा बर्ताव नहीं किया, तो हम उससे उम्मीद लगा भी कैसे सकते हैं? डोंट वरी, यहां नया रूममेट आ जाएगा तो तुम मुझे भूल जाओगे। मैं हमेशा याद रखूंगा और तुमसे बात करते रहूंगा, राहुल ने जवाब दिया और फिर उसने नव्यम को हग कर लिया था। नव्यम की आंखें नम होने लगी थी। उसका सबसे बड़ा सपना यही था कि एक दिन वो टॉप सिंगर बने, लेकिन आज उसे फीस न देने की वजह से यूनिवर्सिटी से निकाला जा रहा था। नव्यम और राहुल एक दूसरे से बात कर रहे थे, तभी पियोन वहां पर आया। उसने नव्यम से कहा, नव्यम खुराना, आपको डायरेक्टर सर ने बुलाया है। ठीक है, आप चलिए, मैं आता हूँ, नव्यम ने जवाब दिया। फिर वो राहुल की तरफ देखकर बोला, अब तो बुलवा भी आ गया है, मैं बाकी की फॉर्मेलिटी पूरी करके आता हूँ। तब तक अगर मेरा कोई सामान इधर उधर रह गया हो तो डाल देना। इतना कहने के बाद नव्यम वहां से निकला और सीधा डायरेक्टर के ऑफिस में जाने लगा। जैसे ही उसने दरवाजे पर कदम रखा, उसने देखा कि वहां डायरेक्टर के सामने कोई बैठा हुआ था। किसी और को वहां देखकर नव्यम ने कहा, मैं बाद में आता हूं सर। अरे नहीं, तुम्हें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टर ने कहा और नव्यम को अंदर आने का इशारा किया। जैसे ही नव्यम ने अंदर कदम रखा, वो कुर्सी पर मौजूद शख्स को देखकर चौंक गया। वहां रुद्राक्ष बैठा हुआ था। नव्यम रुद्राक्ष से कुछ पूछ पाता उससे पहले डायरेक्टर ने हंसते हुए कहा, भाई तुम तो बेवजह ही स्ट्रेस ले रहे थे, मुझे नहीं पता था कि तुम रुद्राक्ष खुराना के भाई हो। ये एक वक्त में मेरा स्टूडेंट रह चुका है और तुम्हारी तरह अच्छा गिटार बजा लेता है। मुझे किसी का फेवर नहीं चाहिए, नव्यम ने सख्ती से कहा। रुद्राक्ष ने सख्त निगाहों से नव्यम की तरफ देखकर कहा, फेवर कर भी कौन रहा है, जरूरत पड़ने पर सूद समेत सब वसूल कर लूंगा। डायरेक्टर सर को उनकी बातें समझ नहीं आई। वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोले, लगता है दोनों भाइयों में किसी तरह की टक्कर हुई है, वैसे भी भाई बहनों में ये तो चलता ही रहता है। नव्यम, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए यहां बुलाया था कि मिस्टर खुराना ने तुम्हारी फीस पे कर दी है, तो अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नव्यम हैरानी से रुद्राक्ष की तरफ देख रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्राक्ष उसकी किसी तरह की मदद करेगा। नव्यम आगे कुछ बोलता उससे पहले रुद्राक्ष ने कहा, बाहर चलकर बात करते हैं। नव्यम ने उसकी बात पर हामी भरी और रुद्राक्ष के साथ बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने रुद्राक्ष से सीधे सीधे कहा, आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? इतना भी अच्छा मत बनिए कि लोग आपका फायदा उठाएं। मैं अपना देख लूंगा, आप खुराना फैमिली का साथ निभाइए, मुझे आपके साथ की जरूरत नहीं है। मैं आप खुराना फैमिली के साथ नहीं, उनके खिलाफ हूं, रुद्राक्ष ने भौंहें उठाकर कहा। आप क्या चाहते हैं कि मैं उनकी बर्बादी में आपकी मदद करूं? मुझे उस फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने मुझे बीच रास्ते पर छोड़ दिया था। उनकी बर्बादी आबादी से अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, नव्यम ने गुस्से में कहा। वो अपनी पूरी फैमिली से नाराज था। जब से उसने घर छोड़ा था, उसने काफी कुछ चीजों का सामना किया था, जिसके बाद से वो विक्रांत से कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गया था। रुद्राक्ष ने नव्यम के कंधे पर हाथ रखकर सर्द आवाज में कहा, मुझे इसी की उम्मीद थी, उनसे कोई मतलब रखना भी मत। रही बात तुम्हारी ट्रेनिंग और बाकी चीजों की, तो तुम्हें हर मंथ इसी तरह पैसे मिलते रहेंगे,
बस इसे फ्री का मत समझ लेना, जरूरत पड़ने पर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैंने कहा ना, मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, आप चाहें तो अपने पैसे और फीस वापस ले सकते हैं, नव्यम ने सीधे सीधे कहा। मुझे फीस वापस चाहिए और ना ही कोई हेल्प, तुम जैसी मदद करने सोच रहे हो वैसा भी नहीं मांगना चाहता, बस यही चाहता हूँ कि तुमने अगर खुराना खानली से रिश्ते तोड़ लिए हैं तो उनसे गलती से भी वापस रिश्ते जोड़ने की मत सोचना, वरना उनके चक्कर में मैं तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगा, रुद्राक्ष ने कोल्ड वॉइस में कहा। आज नव्यम को उसकी ऑलिव ग्रीन आईज में पहली बार तूफान सा दिखाई दिया, वरना तो वो शांत रहता था। नव्यम ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, वैसे भी उनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है, वैसे मैंने दादी को बात करते हुए सुना था, वो आपकी पत्नी को बॉर्डर पर भेजना चाहती थी, अब वो बॉर्डर पर कौन सी कंट्री है आई रियली डोंट नो। नव्यम की बात सुनकर रुद्राक्ष चौंक गया था। नव्यम ने बदले हुए के चेहरे के बदले हुए भावों को देखकर कहा, वो ईशानी से बदला लेना चाहती थी तो किसी अच्छी कंट्री में नहीं भेजेगी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर तालिबान जैसी जगह पर भेजना चाहेगी, दादी की सोच के हिसाब से चलिए भाई, आप ढूंढ लोगे उसे। और तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, रुद्राक्ष ने हैरानी से पूछा। क्योंकि वो मुझे अच्छी लगती थी, गलत सेंस में मत लेना, लेकिन उसके आने के बाद आपके अंदर भी कुछ पॉजिटिव चेंज आए, वरना तो आप रोबोट की तरह काम करते रहते थे। ऑल द वेरी बेस्ट, मुझे पता है कि आप उसे ढूंढ लोगे और वो जिंदा है, नव्यम ने जवाब दिया और फिर वहां से चला गया।
रुद्राक्ष को एक हिंट मिल चुका था, लेकिन अभी भी उसकी जंग खत्म नहीं हुई थी। वो बाहर की तरफ बैठकर बोला, तुम्हारा पहला सहारा छीन लिया है विक्रांत खुराना, अब दूसरे की बारी है। नव्यम में तुम्हारा खून जरूर है, लेकिन वो स्वाभिमानी है और इसी बात का मुझे फायदा उठाना होगा। मेरे फीस पे करने के बाद वो कभी तुम्हारे पास नहीं जाएगा। देखते हैं कि इस जंग में कौन जीतता है। ईशानी को तो मैं ढूंढ लूंगा, लेकिन साथ ही वादा है मेरा खुद से कि तुम्हें रोड पर भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। रुद्राक्ष की आंखों में आग थी। उसने पहले दिन ही विक्रांत के सबसे बड़े सहारे नव्यम को छीन लिया था। अगली किसकी बारी थी ये तो रुद्राक्ष ही जानता था।